कुछ देर पहले फुलवा के बाहर जाने के बाद प्रियल वहां पर बैठकर निक के बारे में सोच रही थी। उधर निक उस सुरंग में थोड़ा ही आगे गया था कि अचानक उसे रूपाली, सुनहरी और किसी तीसरे इंसान की बात करते हुए आवाजें सुनाई दीं, जो उस कमरे की तरफ ही जा रही थीं। रूपाली ने चलते हुए कहा, ताही, मुझे नहीं लगता कि वो जन्नत इतना रिस्क लेकर आधी रात को यहां पर आएगी। वो अच्छे से जानती है कि एक बार इस जन्नत बाजार में कोई आ गया तो उसके बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो वहां जाने से पहले एक बार फिर से सोच ले। सुनहरी ने जवाब में बोला, तुझे अच्छे से याद तो है ना सुनहना कि तूने जन्नत को यहां आज ही देखा था। देख, मैं पहले ही बोल रही हूं कि तूने मेरी नींद हराम की है। अगर वहां पर जन्नत नहीं मिली तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। ताई, मैं सच बोल रही हूं, वो जन्नत उस कमरे में थी जिसे तुमने फुलवा और वो साहब के लिए सजाया था। और तो और उस कमरे में वो साहब भी नहीं थे। मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन जन्नत उस कमरे में अलमारी के पास खड़ी कपड़े लगा रही थी, सुनहना ने बताया। जैसे ही निक ने उनकी बात सुनी तो वो जल्दी से दौड़कर सुरंग के रास्ते उसी कमरे में वापस गया। वहां जाकर वो उस अलमारी के अंदर बने दरवाजे को जोर जोर से खड़खड़ाने लगा। खड़खड़ाने की आवाज सुनकर प्रियल का ध्यान टूटा। प्रियल ने कहा, लगता है ये वापस आ गए, पता नहीं इन्हें चैन नहीं मिलता, अब क्या रह गया इनका यहां। बोलते हुए प्रियल ने अलमारी का दरवाजा खोला। निक ने दूसरी साइड से कहा, मिसेस शर्मा, जल्दी से दरवाजा खोलिए, बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, शायद आपको यहां पर किसी ने देख लिया है, आप जल्दी से अलमारी का दरवाजा खोलिए। निक की बात सुनकर प्रियल ने अपने काम में फुर्ती दिखाई। निक और प्रियल ने मिलकर जल्दी से सारा सामान वापस अलमारी में ठूस दिया। प्रियल ने घबराते हुए कहा, अब क्या करेंगे हम, फुलवा भी बाहर गई हुई है, अगर वो यहां होती तो मैं इस अलमारी की सुरंग के रास्ते बाहर चली जाती। फुलवा कहां है, वो ठीक तो है ना मिसेस शर्मा? प्रियल ने कहा, हां ठीक है, वो वॉशरूम गई थी, लेकिन हम जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, एक काम कीजिए, आप अपने कपड़े खोलिए। निक ने कहा, मैं अपने कपड़े खोलूं, वो भी आपके सामने, मैं नहीं खोलने वाला। देखिए, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सब एक्सप्लेन कर सकूं, अब जल्दी से अपना शर्ट निकालकर वहां पर बेड पर लेट जाइए। प्रियल ने जल्दी जल्दी उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। निक ने कहा, ओके समझ गया, लेकिन फुलवा के बिना कैसे, वो लोग देखेंगी तो एक मिनट में पकड़ लेंगी। निक आगे कुछ बोलता उससे पहले प्रियल ने निक को बेड पर धक्का दिया और उसके पास जाकर लेट गई। प्रियल ने अपने पैरों को थोड़ा मोड़कर खुद को चादर से ढक लिया। निक ने कहा, मिसेस शर्मा, आप मुझसे दूर रहिए, मुझे नहीं आना अब आपके पास, आप थोड़ा दूर रहकर भी तो ये ड्रामा कर सकती है ना, तब भी कोई नहीं पकड़ पाएगा आपको। प्रियल ने निक के चिपकते हुए कहा, चुपचाप अपना मुंह और आंख बंद कर लीजिए। निक ने अपनी आंखें बंद करके सोचा, चलो मिशन के बहाने ही सही, तुम मेरे करीब तो आई, प्लीज अब कभी दूर जाने की सोचना भी मत। निक और प्रियल दोनों वहां पर सोए ही थे कि वहां पर रूपाली, सुनहरी और सुनैना पहुंच गईं। वहां पर सब कुछ सामान्य देखकर वे तीनों वहां से वापस चली गईं। उनके जाते ही निक ने आंखें खोल ली तो वहीं प्रियल ने भी अपने ऊपर से चादर को हटा दिया। प्रियल निक के बिल्कुल करीब थी, जैसे ही उसने निक की आंखों में देखा तो वो उनमें खो गई। प्रियल का जैसे खुद पर कोई काबू ही नहीं रहा और वो निक के बिल्कुल आने लगी। निक ने जब प्रियल को अपने इतने करीब आता देखा तो वो उसके होठों पर किस करने लगा। प्रियल और निक अपने बीच की सारी दूरियां भुलाकर बस एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी फुलवा खिड़की से कमरे के अंदर आई। फुलवा ने उन दोनों को साथ में इतने करीब देखा तो उसने अपनी आंखें बड़ी करके बोला, दीदी, भैया। फुलवा के पुकारने पर निक और प्रियल को होश आया कि कैसे वे दोनों अपने जज्बातों में बह गए थे, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। प्रियल ने जल्दी से उठते हुए कहा, अब तक कहां थी तुम फुलवा, बोला था ना जल्दी आना। प्रियल घबराहट के मारे कांप रही थी। फुलवा ने कहा, लेकिन दीदी आपने तो कहा था कि जल्दबाजी मत करना, शायद मैं जल्दी आ गई या गलत समय पर। निक भी जल्दी से खड़ा हुआ और शर्ट पहनने लगा। मिसेस शर्मा, आप घर जा रही हैं राइट अवे एंड इट्स फाइनल। आपको आपका मिशन याद नहीं होगा, लेकिन मुझे तो है। अच्छा, किस करते टाइम इन्हें कुछ नहीं याद नहीं था और अब अचानक से मिशन, छोटी सब याद आ गए, प्रियल ने बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ तो किसने बोला था इतने पास आने के लिए, उसकी बात सुनकर निक ने सोचा। उन दोनों को चुप देखकर फुलवा ने पूछा, दीदी, भैया, कुछ हुआ था, आप दोनों चुप क्यों हो? निक ने कहा, फुलवा तुम सो जाओ, ये अभी इसी वक्त यहां से जा रही है, तो इसे गुड बाय बोल दो। प्रियल ने कहा, आपको जहां जाना है जाइए, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही और मैं क्यों सुनूं आपकी बात। मत सुनो, अब तो तभी बात होगी जब कल मैं तुम्हें इस मिशन से निकलवा दूंगा, निक ने मुस्कुराते हुए अपनी भौहें चढ़ाई। प्रियल ने कहा, हाँ सपने देखने में कोई बुराई नहीं है कैप्टन निक, लेकिन मैं नहीं, आप यहां से बाहर जाओगे। निक प्रियल का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे वहां से बाहर निकाल रहा था कि प्रियल ने जोर से निक के पैरों पर किक किया। फुलवा ने आंखें बड़ी करके कहा, अरे दीदी आप तो मारती भी हो। निक के चेहरे पर दर्द के भाव थे। उसने उसी अंदाज में कहा, हाँ बहुत, लेकिन तुम कितना भी मार लो तुम्हें तो यहां से बाहर निकालकर ही रहूंगा। प्रियल निक को मारने के लिए फिर से किक करने लगी। निक सेल्फ डिफेंस में उसे रोकने के लिए मुना तो गलती से प्रियल के गाल पर जोर से थप्पड़ लग गया। प्रियल के गाल पर उसकी अंगुलियों के हल्के निशान आ गए और दर्द के मारे प्रियल की आंखों में आंसू आने लगे। सेल्फ डिफेंस के चक्कर में निक के हाथों प्रियल के गाल पर जोर से चांटा लग गया। प्रियल की आंखों में पानी और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। निक ने धीरे से कहा, मर गए। फुलवा ने प्रियल के पास आकर पूछा, दीदी आप रो रही हो? देखो गुड़िया, तुम भी जानती हो कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे गलती से हो गया। सॉरी, तुम चाहो तो मुझे वापस मार सकती हो, निक ने धीमी आवाज में कहा। प्रियल वहां से जाने के लिए गुस्से में अलमारी का सामान जल्दी जल्दी बाहर निकालने लगी। निक उसको मनाने के लिए बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रियल गुस्से में कुछ भी नहीं बोल रही थी। निक ने कहा, मतलब गलती मेरी ना भी हो तो भी बड़ी मेरी ही बचनी है। गुड़िया प्लीज मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद चले जाना। बस एक बार यार, मैंने जानबूझकर नहीं किया, पहले भी तो तुमने इतनी बार मुझे मारा था, मैंने कभी तुम पर वापस हाथ नहीं उठाया। फुलवा ने बीच में कहा, नहीं भैया शायद आप भूल रहे हो, आपने एक बार पहले भी दीदी को कैसे इतनी जोर से डंडे से मारा था और आज उन्हें थप्पड़ लगा दिया। हाँ इसे वो भी याद दिला दो कि मैंने इसे डंडे से मारा था, निक ने सोचा और फिर फुलवा की तरफ मुड़कर कहा, अरे यार बचाने के लिए मारा था, कौन सा जानबूझकर मैं इसे रोज रोज मारता हूं। फुलवा तुम अपनी आंख बंद करो एक बार। लेकिन क्यों? फुलवा ने पूछा। निक ने कहा, पता नहीं तुम लड़कियों को जिद क्यों करनी होती है, जो बोला है वो करो ना। फुलवा ने अपनी आंखों पर हाथ लगाकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। प्रियल वहां से अलमारी के अंदर जा चुकी थी। निक प्रियल के साथ अलमारी में बैठ गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरा दम घुट रहा है, प्रियल ने धीमी आवाज में कहा। पहले बताओ कि तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना, मैंने जानबूझकर नहीं मारा तुम्हें गुड़िया, बोलते हुए उसने प्रियल के उस गाल पर हाथ फिराया जिस पर थोड़ी देर पहले उसने थप्पड़ मारा था। आई एम सॉरी, प्रियल ने कहा, इस थप्पड़ का हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। इसका मतलब तुम मुझे मारोगी? प्रियल ने कहा, हाँ लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए।
निक ने प्रियल के करीब आकर उसके गाल पर किस किया जहां पर उसने थोड़ी देर पहले थप्पड़ मारा था। निक ने कहा, तुम मेरा सुकून हो प्रियल, तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। निक कोई आ जाएगा? लेकिन हमारी तो 6 साल पहले शादी हो गई थी ना, फिर कोई आए या ना आए हमको क्या फर्क पड़ता है? प्रियल ने आंखें तरेर कर कहा, हम जन्नत बाजार में हैं, आपके घर पर नहीं, जो किसी के आने या ना आने का फर्क ना पड़े। कहकर वो उस सुरंग के अंदर जाने लगी। थोड़ी दूर जाकर उसने मुड़कर कहा, हाँ इस थप्पड़ का हिसाब आपको देना पड़ेगा। निक ने कहा, मेरे दिए किसेस का तो कभी तुम हिसाब नहीं देती, आए बड़ी थप्पड़ का हिसाब लेने वाली। जाओ मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी, और हाँ प्लीज जीनू और एमा को मत बताना, वरना वो दोनों तो मेरी जान ही ले लेंगी। प्रियल ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। निक वहां का सामान वापस पहले की तरह सेट करके फुलवा के पास आकर बैठ गया। फुलवा ने पूछा, और दीदी ने आपको माफ नहीं किया तो? निक ने कहा, पता नहीं लेकिन मैं उसके बिना जी नहीं सकता। तो आप उन्हें पहले से जानते हो? पहले तुम यहां से निकल जाओ, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब आराम से बैठ कर दूंगा। निक वहां पर आंख बंद करके बैठ गया और प्रियल के साथ बिताए लम्हों को फिर से अपनी यादों के जरिए महसूस करने लगा। चैप्टर 2 ऑफ 2। प्रियल जन्नत बाजार से घर पहुंच चुकी थी। प्रियल घर पहुंची तब सुबह के 7 बज चुके थे। घर जीनू और परी के अलावा और कोई नहीं था, सारे अपने काम से बाहर गए थे। परी ने कहा, गुड मॉर्निंग दी, आ गई वॉक करके? जीनू ने पूछा, प्रियल तेरे गाल को क्या हुआ, ये लाल कैसे हुआ? प्रियल ने कहा, नहीं ये तो बस ऐसे ही। यार प्लीज इसे मेकअप से छुपा लेना, वरना जीजू देख लेंगे तो परेशान हो जाएंगे, परी ने कहा। उसके ऐसा कहते ही प्रियल ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, चुप कर जीजू की चमची, ये निशान उन्होंने ही दिया है। प्रियल की बात सुनकर परी और जीनू जोर जोर से हंसने लगी। पहले तो प्रियल ने उन्हें देखकर मुंह बनाया, लेकिन फिर बाद में उसे भी हंसी आने लगी। जीनू ने कहा, अब तो निक गया काम से। प्रियल ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था, लेकिन वो बहुत डर गए थे। परी ने पूछा, दी जीजू ने तुझे थप्पड़ मारा था? यार उन्होंने जानबूझकर नहीं मारा था, गलती से लग गया था, प्रियल ने बताया। जीनू ने कहा, हाँ तब तो ज्यादा जोर से नहीं लगा होगा? प्रियल ने कहा, ऐसा भी कुछ नहीं था, बोलते हुए प्रियल ने अपना गाल आगे किया और कहा, देख रही हो ना पूरा गाल लाल हो गया,
मेरी आंखों में आंसू आने लग गए थे, इतना जोर से थप्पड़ मारा था उन्होंने मुझे। परी ने हंसते हुए कहा, पता नहीं अब जीजू की पिटाई डंडे से होगी या झाड़ू से। माफ कर देना दी उन्हें, बेचारे कितने दिनों से तेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। इसे छोड़ो, मैं इतनी देर बाद आई हूँ, कम से कम खाना पानी तो पूछ लो, प्रियल ने बहाना बनाकर परी की बात को टाल दिया। उसकी इस बात की तरफ से किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और परी उठकर किचन में चली गई।